शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा की आज की मुरली संगम युग की महिमा पर है। वैसे तो सत्युग त्रेता का भी बीच में संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है, लेकिन जब बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, ये केवल इस कलयुग और सत्युग के संगम की ही बात कहते हैं। दूसरे कोई भी संगम युग कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होते हैं, क्योंकि वहां तो उतरती कला ही है, नीचे ही गिरते हैं। पर यहां हमारी चढ़ती कला है, उड़ती कला है, यही कहेंगे। तो संगम पर क्या क्या होता है आज सारी मुरली में बाबा ने वो भी सुनाया। बहुत सारी बातें होती है संगम पर, नोट करते जाना। और मुरली पढ़ते समय ऐसे लग रहा था जैसे ये ब्रह्मा बाबा का विचार सागर मंथन है। शिव बाबा तो सुनाते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो विचार सागर मंथन करते थे। तो बाबा ने विचार सागर मंथन करके कई बातें कही है। फिर बाबा ने कहा आप भी ऐसे विचार सागर मंथन करो तो आपको भी और कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिल जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा कैसे विचार सागर मंथन करते थे फिर मुरली में आके सुनाते थे, वो स्पष्ट आज की मुरली से अनुभव होता है। तो सुनते बाबा के महावाक्य आज 14/5/2025 है। मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, ये कभी नहीं भूलो, हम अभी संगम पर हैं। तुम्हें पुरानी दुनिया से तैलक तोड़ देना है। जा रहे ना, हमारा लंगर उठ चुका है कलयुगी दुनिया पुरानी दुनिया से, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से तैलक यानी नाता तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है और किसी युग में ये विशेषता नहीं होती जो इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर होती है? उत्तर है, संगम की विशेषता है, पहली बात, पढ़ते तुम यहां हो और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। अन्य कोई पढ़ाई में ऐसे नहीं होता है, पढ़ते एक जन्म में है और उनकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलती है। उसी जन्म में प्रारब्ध मिलती है, डिग्री मिलती है और फिर नौकरी मिलती है या जो भी व्यवसाय करते हैं, तो उसी जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया तो पढ़ाई खत्म, फिर नए सिर पढ़ना पड़े नए जन्म में। पर यहाँ बाबा कहते हैं पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसे नहीं कहेगा तुम यहाँ पढ़ते हो, इसकी प्रारब्ध तुमको दूसरे जन्म में मिलेगी। हाँ, दान पुण्य करते हैं तब कहते हैं, कुछ धर्मशाला बनाते हैं, धन दान दिन करते हैं, कॉलेज बनाते हैं, धर्मशाला हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में, लेकिन लौकिक पढ़ाई के लिए कभी नहीं कहा जाता कि इसकी प्रारब्ध तुम दूसरे जन्म में पाएंगे। तो सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो अमर लोक के लिए, कोई ऐसे पढ़ता है क्या? मृत्यु लोक में पढ़ता अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस संगम की, पढ़ते यहाँ है प्रारब्ध सतयुग में पाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब सारी मुरली इसी पर है, पर आया देश कौन सा, किसका, कौन आते हैं और किसका वो अपना देश है, ये सारा विचार सागर मंथन है। तो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन, प्रश्न ही प्रश्न बाबा ने पूछे। ये तो कोई भी जानते नहीं, गीत तो बना लिया, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, लेकिन कौन है जो दूर देश में रहता है और पराए देश में आया है? क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराए देश में आए हैं? ये फिर दूसरा प्रश्न, उनको अपना देश भी तो है ना, फिर पराए देश में क्यों आते हैं? कई हम लोगों को कहते हैं, आप विदेश क्यों जाते हो, भारत में सेवा नहीं है क्या? ये यहाँ तक भी कई कहते हैं, हाँ भाई भारत में तो सेवा है, लेकिन विदेश में कई ऐसे बच्चे हैं कोने कोने में, अभी वो ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, और भारतवासी वहाँ उनकी सेवा करते हैं तो वो सचमुच बहुत जाग जाते हैं। जैसे विदेशी यहाँ आते हैं तो भारत वाले जाग जाते हैं, है ना, तो भारत वाले वहाँ जाते हैं तो वो भी जाग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराए देश में आए हैं? वो अपने देश में नहीं आते हैं, अपने देश में आएंगे थोड़ी कहेंगे पराए देश में आए। ये रावण राज्य पराया देश है ना, भगवान के लिए ये रावण राज्य पराया देश है। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? उनके लिए थोड़ी कहेंगे परम धाम में है तो अपने देश में से पराए देश में आए हैं। क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? रावण का परदेश कौन सा है? रावण का परदेश है, ये तो रावण का ही देश है ना, तो रावण का परदेश कौन सा है? तो बाबा ने प्रश्न किया, अच्छा रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है? तो रावण का देश कौन सा है? अभी द्वापर कलयुग ये रावण का देश, और फिर रावण का परदेश कौन सा होगा? सत्युग त्रेता, वो तो उसका तो देश है ही नहीं। अच्छा रावण का परदेश कौन सा और देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश है परम धाम, पराया देश कौन सा है? सत्युग त्रेता को शिव बाबा का पराया देश कहेंगे या अपना देश कहेंगे? क्या कहेंगे? सत्युग त्रेता शिव बाबा का अपना देश है या पराया देश है? पराया, शिव बाबा सत्युग त्रेता भी पराया है, वो तो उनका देश नहीं है क्या? चलो द्वापर कलयुग कहेंगे पराया देश है शिव बाबा का, लेकिन सत्युग त्रेता तो स्थापन करते हैं, खुद ही स्थापन करते हैं, तो पराया देश कैसे हुआ? लेकिन वो आते नहीं है, भले उनका अपना वो देश है लेकिन उस देश में आते नहीं है, और आते ही है पराए देश में। और रावण जो है वो अपने देश में आता है, ये उसका देश है, सत्युग त्रेता में नहीं आ सकता है, पराए देश में नहीं आ सकता है। आज बाबा ने सारी ये पूरा रूढ़िहान जो किया है बिल्कुल विचार सागर मंथन करके। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराए देश में तो उनका देश कौन सा है? अपने देश की स्थापना करने आते हैं, सत्य त्रेता बाबा का भी अपना देश है, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? सत्युग त्रेता उनका देश है, पर क्या उस देश में जो उनका अपना देश है जो वो स्थापन करते उसमें आते हैं? तो एक दो ने उत्तर दिया, अच्छा इस पर सब विचार सागर मंथन करना, ब्रह्मा बाबा ने तो किया, तो लेकिन बच्चों को कहा भी आप भी विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बातें हैं, रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। कौन सा है रावण का पराया देश? हाँ बोलो कौन सा है? सत्ययुग त्रेता। तो रावण का पराया देश बताना वो सहज है, राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। तो राम राज्य है रावण का पराया देश, और वो कभी उस पराये देश में आता नहीं, लेकिन राम रावण के पराये देश में आता है ना। तो राम राज्य में कभी रावण आता नहीं, बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। ये है संगम। वो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते। शिव बाबा न सतयुग में आते न कलयुग में आते, कहाँ आते हैं? संगम पर। संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है तो रावण का भी देश है, और नई बात है संगम युग जो है वो राम का भी देश है तो रावण का भी देश है, क्योंकि दोनों इस समय यहाँ है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का, संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ, न कलयुग में न सतयुग में, हम संगम पर हैं। अपने को संगम पर ही समझना चाहिए। अगर कलयुग में समझेंगे अपने को तो क्या होगा? फिर आकर्षण हो जाएगा कलयुग का। सतयुग तो अभी आया ही नहीं है, तो इसलिए उसका आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि जा रहे हैं, लेकिन उसका आकर्षण कम होता है, कलयुग का आकर्षण ज्यादा होता है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तहलुक ही नहीं है, कलयुग से हमारा कोई सब तहलुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तहलुक तोड़ना पड़ता है। रहते ही तो यहाँ ही है तो कलयुग का हिस्सा ना, पर संगम कहलाता है, तो रहते तो यहाँ ही है ना, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, तो बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। अच्छा कैसे जा रहे हैं? फिर दूसरा प्रश्न है, जा रहे हैं हम इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, संगम पर है, पर जा कैसे रहे हैं? तो क्या कहेंगे, कैसे जा रहे हैं? योग से जा रहे, ये याद की यात्रा, ये यात्रा है, याद की यात्रा हमको उस पार ले जाती है। तो कैसे जा रहे हैं? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है। अभी योग से कैसे जाते हैं? योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। इतना बाबा ज्ञान देते हैं, परंतु उस ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान है, योग के लिए भी ज्ञान है। एक बार जगदीश भाई का बहुत सुंदर क्लास चला था। हाँ, योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, धारणा के लिए भी ज्ञान है, सेवा के लिए भी ज्ञान है। बहुत सुंदर क्लास था। तो बाबा कहते हैं योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, ये ज्ञान है योग के लिए, कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। ये भी ज्ञान है ना। अगर ये ज्ञान नहीं है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो योग कैसे लगेगा? तो ये भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। कहीं कहते हमको योग सिखाओ, तो योग सिखाना माना पहले उसको ज्ञान देना पड़ेगा ना, बिना ज्ञान दिए वो योग कैसे लगाएगा। तो ज्ञान अर्थात समझाने, बाप मत देते आए हैं, बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, तो बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है, यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल बन सकता है, कर्म बंधन और कर्म संबंध। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। बंधन ये दुख का नाम है और संबंध सुख का नाम है। अभी कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, न सत्युग न त्रेता न द्वापुर न कलयुग में ब्राह्मण संबंध होगा, केवल ये एक ही संगम युग है जो ब्राह्मण संबंध का युग है। फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे, ये ज्ञान बुद्धि में है, इसलिए जब ये ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो क्या होता है, इसलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानी करते हैं। अच्छा नहीं लगता कलयुगी कर्म बंधन, क्योंकि कर्म संबंध में जा रहे हैं। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, तो बुद्धि मिलती है, ये सब है इस कलयुग में जो भी देहधारी संबंध है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। ये कहने से ही देखो थोड़ा बुद्धि हट जाएगी ना, तो ये सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त एक यात्रा पर है, हमारी जो यात्रा है वो बहुत गुप्त है, याद की यात्रा दिखाई थोड़ी देती है, बैठे हैं एक जगह पर और कहते हैं हम यात्रा पर है, तो ये तो गुप्त है। हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं, ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। क्यों बाप को याद करते हैं, ताकि हम पवित्र बन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना, जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं क्या बनना है, तो बाबा कहते हैं पढ़ रहे हैं फिर इनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए ना, पढ़ाई का फिर फल भी चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था, याद आता है 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, तो किनको पढ़ाया था कल्प पहले, किनको पढ़ाया था, किनको बोलो, हमको, हाँ नशे से बोलो माताएं, हाँ नशे से बहुत, देखिए हमारी कैथल की माताएं आई है, काफी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं आई है, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, हाँ साकार मूल्यों में देखते ना बाबा, वो ककोड़ की माताएं आती थी, गुड़गांव की माता, उस समय तो गांव था गुड़गांव, तो बाबा उनको इतना प्यार करते थे और इतनी मजबूत इतनी तगड़ी, बात मत पूछो। कल भी हमने देखा इतनी बुजुर्ग और सब नीचे धरती पर बैठी है नीचे, हाँ नहीं तो जवान जवान के हमको तो कुर्सी चाहिए, और वो सब नीचे बैठी है और जवान कुर्सी पर बैठे हैं और बुजुर्ग माताएं और वो धरती पर वो नीचे बैठी है, तो हाँ तो इसीलिए बहुत, अभी कल हमने हाथ भी उठाया जो 70 साल और उससे ऊपर है, कड़ी हो जाए माताएं 70 साल से ऊपर जो आई है कैथल, कैथल देखो ये एक तो 80 साल से भी ऊपर है, हाँ ये देखो आगे आगे बैठी 80 साल से ऊपर, हाथ उठाओ माता जी 80 साल से ऊपर है देखो, हाँ 70 साल से, हाँ ये भी देखो, सब बाबा बहुत प्यार करते थे, वो इतनी एक तो इतनी लंबी थी, बाबा से भी लंबी थी और बहुत बुजुर्ग थे, तो बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा को नचाती थी, इतनी ताकत वाली थी, 80 साल की थी, तो बाबा उनका उनको बहुत प्यार करते थे। हाँ माताएं आपको बाबा बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे, उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ ही प्रारब्ध पाएंगे, यहाँ हम पढ़ते हैं संगम पर, इनकी प्रालब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी, ये है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रालब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्म की प्रालब्ध पाना ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते हैं संगम पर, तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग मृत्यु लोक, हम पढ़ते हैं सत्यु के लिए, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। क्यों हम पढ़ रहे हैं? नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए पढ़ रहे हैं। ये है पराया देश, वो है अपना देश। हाँ, ये है कलयुग है पराया देश और सत्युग है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। सत्युग भी बाबा का ही देश है, बाबा ने स्थापन किया, लेकिन उस देश में बाबा को आने की दरकार नहीं है। वो देश बच्चों के लिए ही है, अपने बच्चों के लिए बाबा बनाते हैं। वहाँ सत्युग में रावण का आना नहीं होता है, रावण गुम हो जाता है, रावण गुम हो जाता है सत्युग में। फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। अब सत्युग में रावण भी गुम हो जाता है तो बाप भी गुम हो जाता है। सत्युग में कोई भी उनको जानते नहीं, न बाप को जानते न रावण को जानते हैं सत्युग में, तो दोनों गुम हो जाते हैं। तो याद भी क्यों करेंगे? बाप को भी कोई नहीं जानते तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है, ये रावण का राज्य पराया देश है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। हमको तो रास्ता मिल गया, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वो आते रहेंगे। कई कहते हैं ना, भक्ति में मैंने बहुत धक्के खाए, अब बाबा मिला तो कितनी आत्मा संतुष्ट हो गई है। तो जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा वो आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, ये है रूहानी यात्रा का रास्ता। याद की यात्रा, ये रूहानी यात्रा का रास्ता है, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, पांडव का राज्य नहीं कहेंगे, पांडव संप्रदाय है, राज्य पांडवों को है नहीं। राज्य न पांडवों को है न कौरवों को है, इस समय प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा ही तो है नहीं, तो दोनों को राज्य नहीं है, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में तो दोनों को ताज दे दिया है, पांडवों को भी ताज दे दिया, कौरवों को भी ताज दे दिया। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज तो नहीं देंगे, चलो दे देंगे कौरवों को पांडवों को, क्योंकि वो दिखाते राजकुमार थे, चलो दे भी दिया लेकिन लाइट का ताज तो उनको नहीं दे सकते ना। तो बाबा कहते हैं अगर दे भी दे तो कौरवों को लाइट का ताज तो नहीं देंगे, अच्छा पांडवों को देंगे, पांडवों को देंगे। बाबा कहते पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते। क्यों क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि पुरुषार्थी है। आज जो अलंकार है विष्णु के वो भी नहीं दे सकते हैं, तो ताज की तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं नहीं दे सकते क्योंकि पुरुषार्थी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे, अच्छा किसको देवे ताज, तो किसको देवे, इसीलिए ये सब निशानियां किसको दे दी है, ताज भी दोनों ताज और शंख चक्र गदा पद्म ये भी अलंकार ये किसको दे दिया है? शूद्रों को तो दे नहीं सकते, ब्राह्मणों को भी नहीं दे सकते हैं, तो किसको दे दिया है? बाबा कहते हैं विष्णु को दे दिया है। इसलिए ये सब निशानी विष्णु को दे दी है क्योंकि वो पवित्र है। सत्युग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है, सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन उस दिन बाबा ने कहा ना कि भले सन्यासी कहलाते हम पवित्र हैं, लेकिन तुम भी पवित्र बनते हो, वो भी पवित्र बनते हैं, लेकिन अंतर क्या है, तुम श्रीमत पर पवित्र बनते हो और वो तो शंकराचार्य की मत पर बनते हैं, तुम शिवाचार्य की मत पर पवित्र बनते हो, तो तुम ऊंचे हो गए ना। तो बाबा कहते हैं सन्यासी लोग कहलाते हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, दुनिया इस समय पवित्र नहीं है, जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। ये है रावण की पतितपुरी, पतितपुरी हाँ ये पुरी है, तो पुरी हाँ पुरी नहीं पुरी है, रावण की पतितपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं, वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। बागवान भी बन गए बाबा, खिवैया भी बन गए, पतित पावन भी है, फिर बाबा कहते कमांडर, तो तुम्हारा कमांडर भी एक ही है। आर्मी हो ना, सेना हो, तो सेना का कमांडर भी एक ही है। यादवों का कमांडर इन चीफ किसको कहेंगे? चलो पांडवों का तो कमांडर इन चीफ शिव बाबा है, शिव बाबा के डायरेक्शन से चलते हैं पांडव। अब यादव किसकी डायरेक्शन से चलते हैं? विनाश करने वाले। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या शंकर को कहेंगे कमांडर इन चीफ, क्या कहेंगे? तो बाबा ने बच्चों से प्रश्न किया, यूं तो वो कोई विनाश कराते नहीं है, अब शंकर अगर कोई विनाश कराता है तो सारा पाप, हाँ इतना दुख, उसका पाप शंकर को लग जाए, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी नहीं कराता, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। तो कमांडर इन चीफ शंकर को कहे, फिर बाबा कहते यो तो वो कोई विनाश कराते नहीं है, सब जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। क्या है उत्तर? जब समय होता है तब लड़ाई लगती है, बच्चे तैयार हो जाते हैं तो लड़ाई लगती है। अभी भी कई कहते क्यों नहीं इंडिया ने लड़ाई की आगे, क्यों नहीं आगे बढ़े, क्यों क्यों धर्म ये विराम कर दिया, युद्ध विराम कर दिया, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे तैयार ही नहीं हुए कि आगे बढ़े और ब्रह्मोस यूज करे और आगे और वो एटम बॉम्ब फेंके तो पता नहीं खत्म अभी विनाश हो जाए, लेकिन बच्चे तैयार नहीं है, हाँ इसीलिए रुका हुआ है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं जब समय होता है तो लड़ाई लगती है। तो कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल आदि बनाते हैं, ये सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है ना, मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, कोई तोड़े या न तोड़े अपने आप भी गिर पड़ता है। मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ये सब दब कर मर जाएंगे। जब भूकंप होता है कितने दब कर मर जाते हैं ना, बिल्डिंग भी अगर गिरती है और उसमें लोग रहते हैं तो वो भी दब कर मर जाते हैं, सब दब कर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे, हार्ट फेल भी हो जाते हैं उस समय। हाँ एक बहन अनुभव सुना रही थी कि ट्रेन में थे, वो अचानक जोर से एक आवाज हुआ, धक्का हुआ, ट्रेन जोर से रुक गई और उसी समय एक बहन ऊपर सोई हुई थी और वो एकदम ऊपर से नीचे गिरी और एकदम हार्ट फेल हो गई, मानो उसी समय उसकी डेथ हो गई। तो डेथ हो गई, मानो इतना शॉक आया उसको तो हार्ट फेल हो गई। तो बाबा कहते हैं कोई शॉक में मरेंगे, बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। अभी भी कहते हैं कि वहाँ उनका जो न्यूक्लियर केंद्र है वहाँ उसको भी क्षति पहुंची है, तो रेडिएशन कुछ फैल रहा है। तो देखो बाबा कहते हैं कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती नहीं है, सत्युग त्रेता में बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। बाबा कई बार कहते थे नयों को कि अभी लास्ट आए हो, फास्ट जा सकते हो, अभी टू लेट नहीं हुआ है। तो बाबा पर्व साकार में बाबा कहते अभी लास्ट चांस है। हाँ, फिर जैसे समय बीतता जाएगा तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे, अभी लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। देखो भगवान उवाच, देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे, मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, तो मरने के पहले तो याद की यात्रा करो, मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, जहाँ जाना होता है उसको भी याद करना होता है। तो बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी। तो घर चले जाएंगे, घर को याद करो, बाप को याद करो, बाप के पास घर में चले जाएंगे। परंतु सिर्फ घर को याद करने से पाप नाश नहीं होंगे। घर को तो सन्यासी भी याद करते ना, ब्रह्म तत्व को याद करते, पर बाप को याद नहीं करते। उनको पता ही नहीं कि बाप तो उसमें रहने वाला है, तो ब्रह्म तत्व को याद करते। परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। अब उसके लिए क्या करो, याद का चार्ट रखो कि हमने सारे दिन में क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वो भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है। अब कई कहते कि सारा दिन यही लिखते रहे क्या चार्ट, तो बाबा कहते सारा दिन थोड़ी लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था तो बाबा को की याद में बैठे बैठ गए। अंदर में नोट रहेगा ना, तो लास्ट में फिर रात को लिखना होता है। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े, डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ये है ही ये, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। हाँ, ये है मूल बात। तो बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा, अब क्या बच्चे बाबा से रुरियान करते हैं, बाबा हम आपके हैं, कहते हो ना, माताएं कहती हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर दे ही अभिमानी बनते हैं। हाँ बाबा हम आपके हैं पर हम भूल गए, अभी आपने बताया है तो हम फिर आत्म हम देही अभिमानी बनते हैं। सत्युग में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को यह सब धारणा कर फिर क्या करना है, धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, फिर समझाने लायक बनना है। तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं, ड्रामा अनुसार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सब सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हैं, चलो मुश्किल है कल्प वृक्ष का चित्र समझाना, ये नहीं समझा सकते हैं, भला ये तो सहज है ना। कौन सी बात सहज है, कल्प वृक्ष समझाना, चक्र समझाना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर कौन सी बात बहुत सहज है समझाना। हाँ, कौन सी बात, बाबा कहते किसको भी बोलो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये तो समझाना सहज है ना। हाँ, माताएं सब समझाती है, कैथल की माताएं सब ज्ञान देती है दूसरों को, जो देती है हाथ उठाओ, देखो कितनी, अरे सारी देती है, देखो कितनी हाथ उठा रही है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल सहज है। ये बापी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कि भगवान कहते हैं तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे कह देने से किसी को तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप भी जानना पड़े, ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले फिर पार्ट बजाती है। वो एक्टर्स तो कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कैसे कंपेयर किया है, वो एक्टर्स जो ड्रामा में पार्ट बजाते हैं वो भिन्न भिन्न अपने अपने कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, और तुम फिर शरीर बदलते रहते हो। वो कपड़े बदलते हैं, तुम शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। हाँ, मेल और फीमेल, कभी मेल बनेंगे कभी फीमेल बनेंगे एक ही ड्रामा में। लेकिन तुम, हाँ तुम ये जो मेल का चोला लिया है तो सारी आयु मेल ही रहेंगे इस जन्म में। इस जन्म में फीमेल नहीं बन जाएंगे, पर आजकल पता है बन रहे हैं। आजकल विदेशों में तो हमने तो वो देखा, हम कहीं हॉलैंड गए थे तो हॉलैंड में अब वो बहन थी, लेकिन उसने अपने आप को कैसे बदली किया और वो भाई बन गई, और भाइयों की के उसमें के साथ बैठती थी। तो उसको मैंने कहा ये तो लगती तो बहन है, भाइयों के साथ बैठी है। तो कहा नहीं, ये अपने आप को बदल रही है, ये भाई बन गई है, और ये भाई में बैठेगी, उसको बहन नहीं पसंद, तो इसीलिए वो भाई बन गई है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं लेकिन अगर मेल का शरीर है तो मेल ही बनेंगे। तुम फिर वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, और यहाँ मेल का चोला लिया इस जन्म में तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। अब ये वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। तो पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। बाप को याद करते करते तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वो ऊंच पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर बाबा सावधान करते हैं, पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी, फिर इज्जत भी जाएगी, क्योंकि इस पद तो कम हो जाएगा ना, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, तोबा 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 तोबा, ऐसे करते हैं, तोबा तोबा, हाँ माफ करो माफ करो, कान पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो बाबा कहते हैं अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहिक टाइम गवाया, परंतु सजा तो खानी पड़ेगी, कुछ हो थोड़ी सकेगा, नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की तो बात नहीं। या तो नापास होते फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अंत में नापास हुए तो हुए, फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास हो फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी तो फिर क्या पढ़ेंगे। अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े उसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी तो कभी नहीं की होगी वो भी कराएगी, हाँ चोरी कभी नहीं की होगी लेकिन अचानक देखा अरे किसी का बटुआ गिरा पड़ा है बहुत पैसा चलो रख दो जेब में, हाँ कभी नहीं चोरी की होगी लेकिन वो माया चोरी करा देगी, चोरी कभी नहीं की होगी वो भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी कि हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, हाँ ऐसे नहीं उठाते हैं, पहले दिल में ख्याल आता रे ये कुछ पड़ा है उठा लूं मैं, बहुत अच्छी चीज है कीमती चीज है उठा लूं, हाँ मोबाइल उठा लूं, मोबाइल उठा लूं, हाँ मोबाइल के चोर तो बहुत होते हैं ये मोबाइल उठा लूं, हाँ ऐसे था एक आया था यहाँ, तो अब वो एक भाई मोबाइल भूल गया अपना, तो दूसरे भाई ने देखा कि ये तो चला गया, अभी तो ये मोबाइल बहुत कीमती है, उठा के जेब में डाल दिया, जेब में डाल दिया। अब वो बेचारा भूल गया था तो वापस आया, देखा पता नहीं मोबाइल तो यहीं रखा था फिर कहाँ गया कहाँ गया, तो फिर हमारे रवि भाई ने कहा यहाँ सीसीटीवी है, आपको मालूम है यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ भी सीसीटीवी है, कोई अगर कुछ डाल देगा जेब में पता चल जाएगा अगर यहाँ डाला है तो सीसीटीवी में देखा और सचमुच सीसीटीवी में पता चल गया कि वो भाई ने उठाया जो उसके बाजू में बैठा था। फिर हम उसके पास गए और उससे पूछा तुमने उठाया है, कहते नहीं मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा सच बताओ, हमको पता पड़ गया कि आपने उठाया, सच बताओ। तो फिर आखिर सच उनको बताना ही पड़ा, हमने कहा दिखाऊं आपको सीसीटीवी, तो डर गया, तो कहा अच्छा। फिर वो लेकर के कमरे से लेकर के आया देने, तो फिर पता है क्या कहता है, कहता अरे कोई बात मेरे पास इनसे अच्छा है, मेरे पास इनसे अच्छा मोबाइल है। अरे तुम्हारे पास इनसे अच्छा मोबाइल तो ये लिया क्यों तुमने। तो देखो ऐसे कोई कोई होते हैं, माया क्या क्या कराती है, चप्पल चोर तो बहुत होते हैं। तो बेचारे हमारे भाई बहन आते अरे पता नहीं कौन मेरा चप्पल पहन के चला गया। तो बाबा कहते हैं तो माया बहुत उल्टे काम करा देती है, चोरी तो कभी नहीं की होगी वो भी कराएंगी, पीछे स्मृति आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया, पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, तो बुद्धि तो मिली है ना, ये राइट है या रॉन्ग है किसी दूसरे की चीज उठाना, ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, अब क्या करना चाहिए, रॉन्ग काम करूं या राइट काम करूं, उठाऊं या नहीं उठाऊं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, तो अभी बाबा आते कि हाँ पवित्र रहना अच्छा है, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए, हम भाई बहन हैं फिर नाम रूप में क्यों फंसे, देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है, कौन रॉन्ग कर्म कराने के संकल्प लाती है, माया। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना ही नहीं है, लड़ाई चलती है फिर गिर पड़ते हैं, अंदर ही अंदर लड़ाई चलती है गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है, एक बार गिर पड़े तो राइट बुद्धि आती ही नहीं है, हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है ये, हाँ कौन सा अच्छे से अच्छा काम है, अंधों की लाठी बनना। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है, तो शरीर निर्वाह के लिए आराम करने का भी टाइम है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस ही नहीं करेंगे तो रॉन्ग कर्म होता रहता है, बाबा की सेवा करो तो शक्ति मिले, तो रॉन्ग कर्म नहीं होगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो रॉन्ग कर्म करेंगे, क्योंकि शक्ति तो पाई नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करते तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, ढीले नहीं बन जाना है संग दोष में आकर। दे अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा, नम्रता एक कवच का रूप है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। सेंट माना संत बन जाओ, संत थोड़ी लड़ेगा दूसरे से, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। हाँ, वो दिखाते ना, बताते महात्मा बुद्ध की कहानी, इसने बहुत गालियां दी लेकिन वो चुपचाप सुनता रहा। फिर कहा, मैं इतनी तुमको गालियां देता हूँ, तुमने क्रोध नहीं किया? तो कहा, अगर कोई किसी को देता है और दूसरा लेता ही नहीं है तो वो चीज किसके पास रह गई? उसी के पास जिसने दिया। तो मैंने तो आपकी कोई चीज ली नहीं। तो वो व्यक्ति इतना शर्मिंदा हो गया, तो आप महान हो, फिर संत हो, ये फिर उसके पांव पड़ गया। तो बाबा कहते हैं कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। कवच होता है ना, पहले जमाने में कवच पहनते थे, इतना बड़ा लोहे का कवच सारे शरीर को ढक देता था, तो अगर तीर लगता भी था तो अंदर नहीं जाता था, वो कवच को ही लग जाता था। तो इसलिए बाबा कहते नम्रता का कवच, नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। ये अपनी चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी रोज अपने मोबाइल में देखते होंगे कि कोई ना कोई रोज शरीर छोड़ रहा है। अभी इतनी बहनों का आया है शरीर छोड़ने का, देखो कितने आए, इतना दो तीन चार तीन पेज आ गया है शरीर छोड़ने का। तो हम सब एक ही साथ उन आत्माओं को योगदान देंगे। अब किस किस ने शरीर छोड़ा है, अव्यक्त बाप दादा की अति स्नेही प्यारी सभी दादियों के प्यार में पली हुई ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन, जो 1977 में ज्ञान में आई, 1983 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आप दिल्ली पांडव भवन में दादी गुलजार जी के साथ रहकर भी सेवाएं की। वर्तमान में आप मानेसर सेवा केंद्र की आप संचालिका के रूप में सेवाएं कर रही थी। कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने कारण बीमार थे। कल मंगलवार दिनांक 13 मई को सवेरे 8:30 बजे अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद में चली गई। ऐसी अथक विश्व सेवाधारी सदा निर्माण और नम्रचित आत्मा को हम सभी ब्राह्मण परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। मानेसर है ना, ORC के पास ही मानेसर है, तो पांडव भवन से उसको दादी गुलजार ने मानेसर में सेवार्थ रखा था। दूसरी है ब्रह्मा कुमारी बेबी बहन, बेबी उनका नाम था, रायगढ़ के कनेक्शन में डबरा उप सेवा केंद्र की संचालिका। आपने भी कल एक जगह स्कूटर से सेवा पर जा रहे थे और रोड पर ही एक्सीडेंट में शरीर छोड़ा। बहुत यंग बहन थी, सेवार्थ जा रही थी, रोड पर ही उनका स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया और वहीं शरीर छोड़ा। उनकी आयु 43 वर्ष थी, 43। और तीसरी बहन ज्ञान सरोवर IT विभाग के राजेश भाई, जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी संभालता है राजेश भाई, उनकी लौकिक माताजी सावित्री माताजी, जो 40 वर्षों से ज्ञान में चलती थी, आप हरदोई UP सेवा केंद्र पर भी 20 साल रहकर ईश्वरीय सेवाओं की, वर्तमान में आप शांतिवन के पास पैराडाइज कॉलोनी में परिवार के साथ रहती थी, उन्होंने परसों सोमवार 2 मई अपना पुराना देह त्याग कर बाबा की गोद ली। आपका बेटा राजेश भाई जो ज्ञान सरोवर में 30 वर्षों से IT विभाग में सेवाएं दे रहा है, दूसरा बेटा नवनीत भाई जो ग्लोबल हॉस्पिटल में लाइब्रेरी की सेवाएं करता है, आपका पूरा परिवार समर्पित रूप से महायज्ञ में सेवाएं दे रहा है। ऐसी महान आत्मा को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। अभी मैं कुछ समय पहले ही वो ये माता जी से मिलके आई थी, कहाँ गई थी मैं, लखीमपुर है ये बनारस के कनेक्शन में UP में, तो वो वहां थी। बस वो कहती थी मुझे मधुबन जाना है, मधुबन की रट लगाई बैठी थी। पता नहीं कहाँ शरीर छोड़ा, मधुबन नीचे छोड़ा या वहीं, लेकिन वो भी आत्मा मुक्त हो गई। बहुत बुजुर्ग थी और बीमार भी थी, तो हम उनसे मिल के उनको दृष्टि दी और कहा कि देखो बाबा आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे, तो आखिर मुक्त हो गए। चलो हम इन तीनों आत्माओं को योगदान देंगे। शांति। और भी कईयों ने छोड़ा होगा, पता भी नहीं चलता, इतना बड़ा दैवी परिवार है, तो हम सब के लिए योगदान देंगे। शांति।